नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर बात करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की परिवर्तन के महान क्षण।
हाँ, ये पुस्तक 1988 से 90 के बीच लिखी गई, जो उनकी क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
और पूज्य गुरुदेव ने तो इस पूरे साहित्य को अपना ज्ञान शरीर कहा था, मतलब उनके विचारों का जीवंत रूप।
बिल्कुल, और आग्रह भी किया था कि ये ज्ञान शरीर, ये विचार जन जन तक पहुंचे।
तो आज हम इसी ज्ञान शरीर के कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे पूज्य गुरुदेव ने उस समय के समाज, विज्ञान, अध्यात्म को देखा और भविष्य के लिए क्या दिशा दी।
चलिए शुरू करते हैं, काफी गहरा विश्लेषण है इसमें।
पुस्तक की शुरुआत में ही पूज्य गुरुदेव एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। पुराने समय की बात करते हैं, जहाँ भाव, संवेदनाओं की, आस्था की बड़ी ताकत मानी जाती थी।
हाँ, जैसे एकलव्य का उदाहरण है या मीरा का, सिर्फ भावना से, आस्था से उन्होंने वो पाया जो प्रत्यक्ष शायद संभव न लगता।
लेकिन फिर वो बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे वो दौर आया जहां सिर्फ भौतिक जगत, मतलब जो आंखों से दिखे, जो साबित किया जा सके, बस वही सच माना जाने लगा।
हाँ, जिसे वो प्रत्यक्षवाद कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब कुछ है। इसका नतीजा
ये हुआ, जैसा वो बताते हैं, कि आत्मा, परमात्मा, नीति, आदर्श, ये सब बातें जो दिखती नहीं है, वो पीछे छूट गई, उपेक्षित हो गई।
बिल्कुल, और विज्ञान ने तरक्की तो बहुत की, इसमें कोई शक नहीं, सुविधाएं बढ़ी।
हाला, सुविधाएं तो मिली,
लेकिन पुस्तक यह तर्क देती है कि नैतिकता के बिना इस सोच ने मनुष्य को सिर्फ एक होशियार जानवर मान लिया।
होशियार जानवर मतलब
ये कि अगर आत्मा, परमात्मा, नीति, अनीति का कोई मतलब ही नहीं, तो फिर ताकतवर का कमजोर पर हक जताना या शोषण करना, इसको भी जायज ठहरा दिया गया। बड़ी मछली छोटी को खाएगी, बस यही नियम बन गया।
अच्छा, तो इसी को पूज्य गुरुदेव नीति रहित भौतिकवाद कहते हैं।
नीति रहित भौतिकवाद, हाँ बिल्कुल। और वो बताते हैं कि इससे कुछ ताकतवर लोगों को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों का शोषण ही हुआ।
और इसके परिणाम वो तो काफी गंभीर बताए गए हैं पुस्तक में।
बहुत गंभीर, प्रदूषण, प्रकृति का विनाश, समाज का टूटना, नशाखोरी, यहाँ तक कि जैसे पूरा समाज एक तरह से सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा हो।
ये तो डराने वाली बात है।
और सबसे चिंता की बात यह है, जैसा पुस्तक इशारा करती है, कि थोड़े से फायदे के लिए, मतलब तात्कालिक लाभ के चक्कर में, हम अपने ही लंबे भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं, एक मृग तृष्णा की तरह।
लेकिन पूज्य गुरुदेव सिर्फ भौतिकवाद की आलोचना नहीं करते हैं ना, वो उस समय के अध्यात्म पर भी सवाल उठाते हैं।
सही कहा, वो उस समय फैले पाखंड, आडंबर, कर्मकांड पर बहुत ज्यादा जोर, इन सब पर भी प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई अगर अध्यात्म से जीवन में बदलाव ही नहीं आ रहा तो उसका क्या फायदा।
तो अगर दोनों तरफ, मतलब भौतिकवाद में भी और उस समय के अध्यात्म में भी समस्याएं थीं, तो फिर रास्ता क्या है, समाधान क्या बताया उन्होंने? समाधान के रूप में पूज्य गुरुदेव ने विज्ञान और सच्चे अध्यात्म को जोड़ने की बात की, जिसे उन्होंने तत्व ज्ञान कहा।
तत्व ज्ञान, ये क्या है?
तत्व ज्ञान मतलब वो अध्यात्म जो सिर्फ मानने की चीज न हो, बल्कि अनुभव पर आधारित हो, जिसे प्रत्यक्ष जीवन में परखा जा सके, जिसमें व्यक्तित्व का सुधार, जीवन साधना वो मुख्य हो, सिर्फ पूजा पाठ का बाहरी कर्मकांड नहीं।
और ये सिर्फ विचार नहीं था, उन्होंने खुद इसे जी कर दिखाया।
बिल्कुल, उन्होंने अपने जीवन को ही इसकी प्रयोगशाला बना दिया। उपासना यानी ईश्वर से जुड़ाव,
साधना यानी खुद को बेहतर बनाना,
और आराधना यानी समाज की सेवा, करुणा, ये त्रिधा भक्ति उन्होंने अपने जीवन में उतारी।
और वो मानते थे कि सच्ची भक्ति सिर्फ भावना नहीं है, इससे शक्ति भी पैदा होती है।
हाँ, और इसका प्रमाण वो अपने कार्यों को बताते हैं। इतना विशाल साहित्य लिखना, लाखों लोगों का संगठन खड़ा करना, समाज सुधार के इतने सारे केंद्र चलाना, वो कहते थे कि ये सब सिर्फ इंसानी कोशिश नहीं, इसमें आत्मबल और दैवी सहायता भी शामिल है। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। भविष्य के बारे में क्या कहा उन्होंने? 1988-90 में उन्होंने आगे के लिए क्या देखा?
उन्होंने भविष्यवाणी की, जो आज भी बहुत प्रासंगिक लगती है, कि ये जो चरम भौतिकवाद है, ये अपनी सीमाओं पर पहुंचकर खत्म होगा। मनुष्य को वापस प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा।
और विज्ञान?
विज्ञान को अध्यात्म के साथ मिलना होगा, दोनों को एक दूसरे का पूरक बनना होगा।
और समाज के बारे में?
उनका मानना था कि आने वाला युग नारी प्रधान होगा, स्त्रियों की भूमिका बढ़ेगी, शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि चरित्र बनाने पर केंद्रित होगी।
अच्छा।
हाँ, और समाज में स्वार्थ की जगह उत्कृष्टता, आपसी सद्भावना, सहयोग का माहौल बनेगा, जिसे उन्होंने सतयुग की वापसी कहा। और ये बदलाव उनके अनुसार किसी बाहरी क्रांति से ज्यादा सूक्ष्म जगत में, मतलब आध्यात्मिक तपस्या से आएगा।
तो कुल मिलाकर इस पुस्तक का जो मूल संदेश है वो यही है कि असली बदलाव बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अंदर के सुधार से, सच्चे अध्यात्म से आएगा।
हाँ, आत्मबल ही सबसे बड़ी ताकत है।
ये विश्लेषण आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि आज के इस समय में हम अपने अंदर उस आत्मबल को कैसे जगाएं जिसकी बात पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं, ताकि ना सिर्फ अपना जीवन सुधरे बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आ सके। और जैसा पूज्य गुरुदेव चाहते थे, और प्रकाशक भी यही कहते हैं कि ये ज्ञान शरीर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।